ರಾಧಾರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೇ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ
ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಗಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀ ಇತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ನಾ ನಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆ ಗಾನೆ ಕೆ ಬದಲೇ ಮೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ ಜೊ ತೋ ಅಕ್ಸರ್ ಹಮ್ ದಮ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ तो सब जगह पर ढंगड़ेंगे 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 बजते रहते हैं, उसमें भी कथा करनी पड़ती है. तो भगवान का नाम है, बैकग्राउंड अच्छा है. तो आज हमने यहाँ पर भगवत गीता दान यज्ञ किया. तो उस दृष्टि से थोड़ी चर्चा वो भगवत गीता के ऊपर करना जरूरी है. हम सब लोग भारतवंशी हैं. कोई विदेशी यहां पर बैठा है? सब भारतवंशी है ना. इस पवित्र भूमि पर हम सब लोगों ने जन्म लिया है. पवित्र क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं सब भारतवर्ष में हुए. और दो छोड़कर बाकी सारे संत लोग भी इधर ही आए हैं. एक यीशु ख्रिस्त पश्चिम देश में और एक मोहम्मद पैगंबर जो है वो गल्फ अखाती देश में. इसके अलावा कोई संत और कहीं नहीं हुआ है. जितने भी राज्य हैं, पंजाब है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू है, कश्मीर है, तमिलनाडु है, इसमें सब में संत हुए हैं. और भी होलसेल में हुए, ऐसा नहीं कि एक राज्य में केवल एक, ऐसा नहीं. एक एक राज्य में भी अनेक हुए हैं. और सब लोगों ने भगवान के विषय में गुणगान किया है. और भगवान के विषय में प्रचार किया है, भगवान के विषय में हमको ज्ञान दिया है, प्रेरणा दिया है, बहुत देखभाल की हमारी उन्होंने, हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए बहुत मेहनत की है। और ये हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए उन्होंने बहुत संकट को भी झेला है ना, ताकि हम लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जैसे अभी हम तुकाराम जी का अभंग सुन रहे हैं ना, तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा, पीछे बैठे हुए लोगों का ध्यान होना चाहिए। हाँ, आप लोग सत्संग में आए हैं, भगवान के विषय में सुनने के लिए आए हैं, तो ये तुकाराम महाराज जी को भी कितना कष्ट सहन करना पड़ा, कितनी निंदा सहन करनी पड़ी, कितना आतंक सहन करना पड़ा, लोगों का द्वेष सहन करना पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, उन्हें अभंग लिखे तो उसको नदी में डुबाना पड़ा, फिर प्रकट हो गए, वो भगवान की लीला है। लेकिन एक संत के लिखे हुए अभंग को नदी में डुबा देना कितना बड़ा अपमान है, कितनी बड़ी दुर्घटना है ये। तो एक संत का जीवन जो होता है ना, वो दूसरों के लिए होता है, दूसरों के लिए जन्म लेते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और उनके लिए ही मर जाते हैं, उनके लिए कष्ट सहन करते हैं, ताकि हम सब लोग संसारी लोग जो है ना, हमारे जैसे भोग लेने वाले, दुनिया को भोगने वाले, उन लोगों के दिमाग में थोड़ा प्रकाश पड़े भगवान के विषय में, थोड़ा आकर्षण पैदा हो जाए, इसलिए इतना कष्ट झेलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष जैसा पवित्र देश इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। आप लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, इस दुनिया के सभी लोग यहां पर यज्ञ होम हवन पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, कैलाशवासी, स्वर्गवासी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और बहुत आनंद लेंगे, बहुत सुख लेंगे, और डरते हैं कि हम नरक में चले न जाएं, इस बात से डरते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं, क्योंकि पाप करेंगे तो वहां जाएंगे ना। तो इस प्रकार के ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण किए गए 14 लोक हैं, 14 लोक हैं, उसमें 7 ऊपर हैं, उसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं, लेकिन उसमें एक का ही नाम स्वर्ग है, लेकिन बाकी सबके अलग अलग नाम है, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ज्ञान लोक, भू भुव स्वर, आगे 4, 7 स्वर्ग लोक हैं, ब्रह्मा लोक सर्वोच्च है उसमें, वो 7 के बाद बीच में पृथ्वी आती है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और पृथ्वी के नीचे और 6 हैं जो नरक लोक कहते हैं उनको, वहां पर लोग भगवान के द्वेषी होते हैं, राक्षस लोग, दैत्य लोग, दानव लोग रहते हैं वहां पर, भगवान से फाइट करते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान से अपने आप को शत्रु मानते हैं भगवान का। और ब्रह्मा जी भी खुद कहते हैं कि ब्रह्मा लोक से भी श्रेष्ठ पृथ्वी लोक है। क्यों बोलते हैं ऐसा, सर्वोच्च स्वर्ग लोक है वो, जहां ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं, लाखों 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 वर्ष उनका जीवन होता है वहां पर, और इतना सुख शांति और इतना आनंद है वहां पर, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ लोक पृथ्वी लोक को कहा गया है। इसका कारण यह है कि स्वर्ग लोक से डायरेक्ट भगवान के लोग जाने का रास्ता नहीं है, स्वर्ग लोक भी जाएंगे तो वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अभी आप लोग नवी मुंबई में रहते हो, अगर आपको अमेरिका जाना है तो कहां जाना पड़ेगा आपको, हाँ, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना। किधर भी जाओ आप, कुलाबा में रहो या चेंबूर में रहो या वाशी में रहो या मीरा रोड में रहो, दहिसर में रहो, किधर भी रहो, अगर विदेश जाना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है क्या, नहीं है। उसी प्रकार से भगवान धाम में जाना है तो सारे लोकों में से एक ही रास्ता है, वो पृथ्वी लोक से, नरक लोक में भी रास्ता नहीं है ना, स्वर्ग लोक में रास्ता है, पृथ्वी लोक से रास्ता है, इसलिए पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जहां पर ऐसे भी समझो हमारे बिल्डिंग है, 14 माले का बिल्डिंग है और एक ग्राउंड फ्लोर है और जमीन के नीचे 3 फ्लोर है, होता है ना, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, पार्किंग P1, P2, P3 होता है ना आजकल, आपको बिल्डिंग के बाहर जाना है तो कहां से निकलना पड़ेगा आपको? हाँ, ग्राउंड फ्लोर है कि नहीं? अगर आपको बिल्डिंग से बाहर जाना है तो आप 14 वाले से कूद नहीं सकते, आपको नीचे आना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे और जाना पड़ेगा बाहर। अगर आप बेसमेंट पे हो, पार्किंग में लगा रहे हो, बाहर निकलना है तो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता ग्राउंड फ्लोर से ही निकलता है। उसी तरह से भगवान के धाम में जाने का रास्ता पृथ्वी लोक, जो हमारा 14 लोक का ग्राउंड फ्लोर है, तो भगवान को भी 14 लोक में से पृथ्वी लोक बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए भगवान भी अवतार लेते हैं तो पृथ्वी पर बार बार लेते हैं, है ना। स्वर्ग में अवतार लिया क्या भगवान ने कभी? वो नारद मुनि घूमते हैं वहां पर, लेकिन भगवान जो अवतार लेते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो सारे देवता भी पृथ्वी पर उनको मिलने आते हैं। आते कि नहीं? द्वारका में आए कि नहीं? वृंदावन में आए कि नहीं? सब लोग मिलने के लिए द्वारका में ज्यादा आए, पृथ्वी में वृंदावन में कम आए। द्वारका में कैसा ना, ऑफिशियल उनका ऑफिस है ना उधर, द्वारका में सब लोग उनको देवता लोग मिलने आते हैं। वृंदावन में तो खेलने की जगह है, प्राइवेट जगह है, प्राइवेट जगह में सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऑफिसर लोग ऑफिस में आते हैं। तो द्वारका में उनका ऑफिस है, राजनीति करने का उधर सभा है उनकी। और पृथ्वी लोक में भी उनको ज्यादा पसंद जो है वो भारत देश है, इसलिए उन्होंने अपने संतों को भी भेजा है भारत भूमि में और खुद भी आए हैं भारत भूमि में। कितने अवतार है, नरसिंह भगवान देखो, वामन देव देखो, प्रल्ला अपने वामन देव, नरसिंह भगवान, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, मीन अवतार, वरा अवतार, कुर्म अवतार, कहाँ लिया सब लोगों ने, है ग्रीव अवतार, सब भारतवर्ष में लिया है। तो ये भारतवर्ष जो है ना बहुत विशेष चीज है। और भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए पिछले जन्मों में अनंत पुण्य करने पड़ते हैं। यहां पर जन्म लेना आसान नहीं है, और यहां पर जन्म लेने के लिए पिछले जन्मों का पुण्यों का अगर भंडार नहीं रहेगा तो यहां पर जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि इस भूमि पर भगवान के अनंत अवतारों के चरण कमलों का स्पर्श हुआ है। इस भूमि पर भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्त जो भगवान को अति प्रिय हैं, उनके चरणों की धूल लगी हुई है। इसमें भगवान ने आकर न केवल चरणों की धूल दी है लेकिन लीला भी की है भगवान ने, है ना। मुरली बजाई है, रास रचाया है, मक्खन चुराया है, महाभारत का युद्ध का लीला किया है, द्वारका लीला किया है, हस्तिनापुर लीला किया है, तो लीला भी यहां पर संपन्न किया है। अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए योग्य स्थान भारत वर्ष को समझा है उन्होंने। फिर अयोध्या में राम जी लीला कर रहे हैं, द्वारका में और वृंदावन में कृष्ण कर रहे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, रंगनाथ जी बनकर आते तो साउथ इंडिया में कर रहे हैं, कहीं सोने की लीला कर रहे हैं, कहीं खाने की लीला कर रहे हैं, कहीं राजनीति की लीला कर रहे हैं, कहीं तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कहाँ कर रहे हैं? बद्रीनाथ में। राजपाट कहाँ कर रहे हैं? द्वारका में। भोजन कहाँ कर रहे हैं? जगन्नाथपुरी में। और सो कहाँ रहे हैं? साउथ इंडिया में। अधिकतर भगवान सोए हुए हैं। और जब खेलने का दिल करता है तो कहाँ जाते हैं? वृंदावन धाम में जाते हैं। सब कुछ भूल कर वृंदावन जाते हैं, भगवान है, मैं भगवान हूं ये भी छोड़कर वहां जाते हैं। किसी को पहचाना नहीं चाहिए कि भगवान है, ताकि दिल से वहां खेल सके। समझो मुझे अभी गुल्ली डंडा खेलने का दिल करता है तो जहां पर प्रवचन करने आया वहां खेल सकता हूं क्या? इधर यहां स्वास वहां कर रहे थे उधर पर गोटी खेलने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर मुझे गोटी खेलना है तो मुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर मुझे कोई जानता नहीं है, मैं दिल खोल के गोटी खेल सकता हूं। वैसे भगवान वृंदावन जाते हैं, वहां वृंदावन में भगवान को भगवान के रूप में कोई नहीं जानता, ना वो उनको समझाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में भगवान जो है अपने भक्तों का ज्ञान भी चुरा लेते हैं। कौन सा ज्ञान? कि वो भगवान है, ये ज्ञान जो है वो भी चुरा लेते हैं भगवान, ताकि वो भगवान को भगवान के रूप में जानते नहीं है। फिर लीला करने में आनंद आएगा, है ना। बच्चों के साथ में गोटी खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, नदी में कूदेंगे, हाँ मेंढक बन के कूदेंगे, पंछी की आवाज निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, पेड़ की शाखा से कूदेंगे, गेंद खेलेंगे, गेंद चुराएंगे, किसी का डब्बे से चोर के खाएंगे, ये भगवान बनकर तो नहीं कर सकते ना। विष्णु बनकर चार भुजा वाले डब्बा में से चोरी करके खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए भी एक माहौल बनाना पड़ता है। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, चाहे खेल रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, भारत में ही आते हैं वो। और आज हमारे लोग भारत में जो रहते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे इंडिया में क्या रखा है, ये गल्फ में जाना, दुबई में जाना चाहिए, इंग्लैंड में जाना चाहिए, अमेरिका में जाना चाहिए, इधर क्या है, ना पैसा है, ना स्वच्छता है, ना ऐसा है, ना वैसा है। भारत का हर एक लड़का जो है वो स्कूल से बाहर निकलता सोचता है कि मैं फॉरेन जाऊंगा, और स्कूल में जब पढ़ रहा है तो भी सोचेगा कि फॉरेन का कपड़ा पहने तो अच्छा रहेगा, घड़ी भी है तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, पैंट शर्ट भी कपड़ा जो है वो जापान से आना चाहिए, जूता भी तो अमेरिकन होना चाहिए, जर्मनी का होना चाहिए, यूरोप का होना चाहिए, है ना, कपड़ा भी सूती कपड़ा भी मैनचेस्टर से, इंग्लैंड से आना चाहिए। तो एक तरफ है भारत का गौरव और एक तरफ है हमारी सोच जो उस गौरव से मिलती जुलती नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल अज्ञान है। हमने कई बचपन में कहानी सुनी है, गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है और मरने के समय उसको पता चलता है कि उसके पूर्वजों ने गुप्त धन जो है वो झोपड़ी के नीचे छुपा के रखा था, जमीन के अंदर, लेकिन तब तक उसके मरने के समय आया था, इसलिए जमीन के घर के अंदर नीचे अनंत कोटि धन होने के बावजूद भी जीवन भर गरीब बन के जिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको अज्ञान था, उस धन के बारे में ज्ञान नहीं था। वैसे ही हम लोग, जहां सभी देवता लोग लाइन लगा के जन्म लेने के लिए खड़े हैं पृथ्वी पर, वो भी भारतवर्ष में, वो भी भारतवर्ष में भगवान के भजन करने वाले वैष्णवों के घर में जन्म मिले कलयुग के अंदर, इसलिए सारे लोगों के देवता लाइन लगाकर खड़े हैं कि कहां वैष्णव लोग शादी करेंगे और मैं उनका पुत्र बन के पुत्री बन के रहूं। और हम लोग भारत में जन्म लेकर सोच रहे हैं कि अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं और उनका खाना खाएं, चाउमीन खाएं, पिज्जा खाएं और पास्ता खाएं, ब्रेड खाएं और सैंडविच खाएं। दाल रोटी में किसको इंटरेस्ट नहीं है? दाल रोटी में क्या है? मम्मी मेरी बर्थडे पार्टी होना चाहिए तो पास्ता और पिज्जा होना ही चाहिए। ये तुम्हारे देश में देवता लोग जन्म मिलने के लिए लालायित हैं, आतुर हैं, लाइन में खड़े हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है, क्योंकि देवता लोगों के अंदर अनंत भोग है, वहां पर लाखों साल का जीवन है, लेकिन क्षिणे पुण्य मर्तल्योके विशंति, जब तक पुण्य कर्म का स्टॉक है तब तक वहां रहना को मिलता है, जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। हवाई जहाज में जितना पेट्रोल भरा हुआ है उतना समय तक वो हवा में उड़ सकता है, जब उसका कांटा नीचे आता है तो दूसरा एयरपोर्ट ढूंढकर पृथ्वी पर उतरकर पेट्रोल भरना पड़ता है और फिर उड़ सकता है, लेकिन अनंत काल तक आकाश में हवाई जहाज उड़ सकता नहीं है। जब तक पेट्रोल है तब तक उड़ सकता है, उसी तरह से देवता लोक में, स्वर्ग लोक में जब तक पुण्य कर्म का पेट्रोल है तब तक वहां रह सकते हैं, जब तक भोग के हो गया तो फिर वापस पृथ्वी में आना पड़ता है, सब टेम्पररी है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो जानते हैं कि ना आनंद स्वर्ग लोक में है, ना पृथ्वी पर है, ना नरक में है, क्योंकि सब टेम्पररी है। लेकिन फिर भी इन तीनों टेम्पररी जगह में पृथ्वी बेस्ट है, क्योंकि इस टेम्पररी जगह से भगवान के धाम जाने का रास्ता निकलता है। अब भगवान संतों को यही भेजते हैं। आज भी अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत धनी लोग रहते हैं, लेकिन जब मन दुखी होता है तो मन शांति कहां ढूंढने को आते हैं? भारत में आते हैं, भारत में आते हैं, वृंदावन जाते हैं, हिमालय जाते हैं, कोई साधु को ढूंढते हैं, कोई योगी को ढूंढते हैं, कोई योग सीखना है उनको मन शांति के लिए, मतलब मन बहुत विफलग्रस्त हो गया है, परेशान है, बहुत धन बहुत है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन मन शांति नहीं है। तो जब भी किसी भी देश में लोगों को मन शांति का अभाव
महसूस होता है तो वो कहां देखते हैं? भारत की ओर देखते हैं, पूर्व दिशा में,
जापान में नहीं, फिलीपींस में नहीं, ब्रह्मदेश में नहीं देखते हो। ऑस्ट्रेलिया भी पूर्व देश में है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखते नहीं है कि शांति मिलेगी। मनस शांति को ढूंढने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में जाते नहीं है, जाते केवल भारत देश में। इस पर सोचना जरूरी है। कनेक्शन क्या है उसका कि आज हमने भगवद गीता का यज्ञ किया है। ये भगवद गीता विश्व का सर्वोच्च तत्वज्ञान है। चाहे लोग किसी भी धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, बुद्ध धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, भगवद गीता को मानते हो, एक प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में वो भगवद गीता को मानते हैं, क्योंकि शास्त्र ही ऐसा है वो। और भाइयों और बहनों, ये शास्त्र कहां बोला गया था? कहां बोला गया था बताओ? हाँ, कुरुक्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र कहां पर है? भारत में है, लेकिन भारत में कहां पर है? हरियाणा में। आप में से कितने लोग वहां पर गए हैं बताओ? देखो 50 लोगों की संख्या यहां पर है, 50-60 लोग, उसमें केवल 2-3 लोग ही गए हैं, 4 लोग गए हैं। जहां पर पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान भगवान ने बताया, वो पता भी लोगों को नहीं होगा कि किधर है वो, और किसी का वहां जाने का प्लान भी नहीं होगा। जाने का प्लान होगा तो कहां होगा? महाबलेश्वर जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, हाँ पराठा खाएंगे वहां जाकर, बर्फ में बर्फ खेलेंगे, ये प्लान है। ये प्लान नहीं कि वो जो सर्वोच्च ज्ञान परम भगवान कृष्ण ने उनके परम भक्त अर्जुन को बताया, वो हरियाणा में किधर है, मुझे देखना है वो जाकर। अभी भी वो वहां पर जगह है जहां पर ये ज्ञान बताया गया था, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं है उसको। विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए, उनके मैप में रहता है कि आपको ये देखना है, मजा भी करना है लेकिन ये देखना है, लेकिन हमारे मैप में नहीं है वो। ये दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है। तो वो जो भगवद गीता है वो असली भारतीय है, विदेशी नहीं है वो। जिसको पढ़कर हजारों लाखों साल तक लोगों ने मनस शांति प्राप्त किया है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया है, जीवन के परम उद्देश्य को भगवद गीता के तत्व ज्ञान को मर्म को समझकर प्राप्त किया है। 5000 साल तो अर्जुन को भगवान ने बताया, लेकिन वो उसमें बताते भी है कि ये ज्ञान ऐसे नहीं कि मैं आज आपको नया बता रहा हूं, ये सृष्टि के शुरुआत में मैंने सूर्यदेव को बताया था, सृष्टि के निर्माण के समय, मतलब करोड़ों अब्जो साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को बताया, इक्ष्वाकु को, उसने बाद में उसको मनु को बताया, लेकिन बीच में कट हो गया वो लाइन एक के बाद वाला, तो ये खोया हुआ बीच में टूटा हुआ जो श्रृंखला है उसको मैं आपको दोबारा बताकर चालू कर रहा हूं। इमम विवस्वते योगान, मैंने विवस्वान को बताया इसको, ये पुरातन ज्ञान है, ये बहुत पौराणिक ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, चिरंतन ज्ञान है, और आज ये निमित्त है, आप युद्ध में खड़े हो, आप परेशान हो गए हो, शस्त्र को छोड़कर खड़े हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है और अनंत काल से प्रचलित है, आपके बहाने दोबारा बताने का मौका मिल रहा है मुझे। और अगर आपने हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो ये मनुष्य का जन्म ये समझने के लिए दिया है कि भगवान ने क्या बोला था, भगवान ने क्या बोला था कि अर्जुन को निमित्त बनाकर आम जनता को ये ज्ञान पता चले, इसलिए बताया था। ये मत समझना कि अर्जुन को पता नहीं है सब कुछ जो बताया जा रहा है, लेकिन जानबूझ के अर्जुन जैसे व्यक्ति को भ्रम में डालकर प्रश्न पूछवाए और वो ज्ञान दिया, ताकि हम अभी हजारों लाखों करोड़ों अब्जो साल तक उसको सुन सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। तो अर्जुन तो आर्य था, उसका जन्म से ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति था, उसको बताना नहीं पड़ा सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, चाय मत पियो, कहीं गीता में बताया कैसे, कुरान में बताया हुआ है, अपनी मां के साथ मत सो,
अपनी बहन के साथ और पत्नी, बहन, माँ और बेटी के साथ में संभोग नहीं करना चाहिए, ऐसे कुरान में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि जिनको कुरान बताया जा रहा था वो ये लोग कर रहे थे, इसलिए बताया जा रहा है। मैं आपको कब कहूंगा कि बीड़ी मत पियो? जब आप पीते होंगे तो बताऊंगा ना आपको। अगर आप नहीं पीते हो तो क्यों आप बार बार बताऊंगा आप बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत पियो? नहीं प्रभु जी, नहीं पीता हूं मैं, क्यों बार बार मुझे बता रहे हैं आप? तो ये मत करो, वो मत करो, उसको बताया जाता है, वो जो करता है उसको बताया जाता है कि ये मत करो। लेकिन भगवत गीता में आपको कहीं सुनाई पड़ता है क्या ऐसे? सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, कुंती माता के साथ मत सो जाओ। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रगत अवस्था में थे और उनको भ्रम में डालने की भगवान की योजना थी, ताकि उनके मुख से ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हम और आपके लिए प्रस्तुत हो। और उन्होंने प्रस्तुत तो किया निमित्त पकड़कर, क्या हमने उसको समझने का प्लानिंग बनाया क्या मनुष्य जीवन में? वो एक गहन प्रश्न है। मनुष्य बनने के बाद में क्या हमने ये समझने का प्रयास किया है क्या, योजना बनाई है क्या? आप बोलेंगे अभी हम लोग भगवत गीता बेचते हैं ना दिसंबर के महीने में, तो लोग क्या उन्हें बोलते हैं, समझो आपको मिला मैं और भगवत गीता दिखाया, तो आप बोलेंगे मेरे पास है, घर पे है, जशी आए तशी रखी है उधर मैंने। फिर और जिद करेंगे, बोलेंगे नहीं प्रभु जी हमने पढ़ी है बचपन में, हम बचपन से पढ़ते हैं उसको, हम जानते हैं भगवान कृष्ण को, हम सब जानते हैं भगवान वृंदावन राम भगवान सब जानते हैं। और क्या जानते हैं आप? कर्मण्येवाधिकारस्तः, बस 700 श्लोक में एक श्लोक का एक चौथा हिस्सा हम जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तः, सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों भगवदगीता उतनी नहीं है, लोगों ने उसको क्या है ना इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसको कर्मण्येवाधिकारस्तः बना दिया है। बस गीता मतलब कर्मण्येवाधिकारस्तः, सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, कुछ छोड़ के जाना नहीं चाहिए, बस। लेकिन भगवदगीता वो नहीं है, वो भगवदगीता के 700 श्लोक का एक श्लोक का चौथा हिस्सा है, 1/4, पाओ पाओ। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि भगवदगीता हमारा शास्त्र है, वो गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। अगर हमारा शास्त्र है और गर्व भी है तो उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। शिवजी महाराज पार्वती को बता रहे हैं गीता का महात्म्य, क्या बोलते हैं उसके अंदर? वो बोल रहे हैं कि भगवत गीता का एक श्लोक का एक चौथा हिस्सा भी आपको समझ में आया और आपने उसको जीवन में उतारा, डायलॉग मारने के लिए नहीं बोला, समझ के उसको अगर जीवन में उतारा तो भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी। इतना शक्ति है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि वो कृष्ण अर्जुन का रथ में बैठा हुआ फोटो घर में मत रखो, घर में झगड़े हो जाएंगे, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। और घर में बैठ के महाभारत मत पढ़ो, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, पता है आपको? जहां पर हम देखते हैं भगवान रथ में खड़े हैं अर्जुन के सारथी बनकर, उसमें अनंत प्रेम का सागर भरा हुआ है। हाँ सोचो आप, परम भगवान है वो, कहां से आए वैकुंठ छोड़कर यहां पर मनुष्य बनकर जन्म लेकर लीला कर रहे हैं, अपने भक्त का सारथी बनकर ड्राइवर बने, वो इतनी निम्न सेवा कर रहे हैं, एक तरह से तुच्छ सेवा कर रहे हैं ना। ड्राइवर क्या करता है? टायर में हवा भरता है, गाड़ी में पेट्रोल भरता है, सर्विसिंग करा लेता है, वो साफ करता है, कांच को साफ करता है, सीट को साफ करता है, चलाता है गाड़ी, इधर पार्किंग करता है, साफ चला जाता है, लेकिन वो पार्किंग करके खड़ा होता है, वेट करता है साहब आएगा फिर बैठेगा गाड़ी में, निम्न सेवा है बहुत। वैसी सेवा हमारे भगवान जो वंदनीय पूजनीय गौलोकेश्वर परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, वो अपने भक्त के लिए ये शूद्र सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेम से करते हैं, जबरदस्ती नाटक नहीं करते हैं, प्रेम से करते हैं। क्या नहीं किया उन्होंने? जनाबाई का वो चक्की पिसा कि नहीं? हाँ, सोखोबा के गाय को चलाया कि नहीं उन्होंने? हा नाम्याची खीर चाकतो, चोखोबाची गुरे हाकतो, मतलब क्या? निम्न सेवा किया। वो जनाबाई को बहुत तकलीफ देते थे,
सासु लोग वगैरह, तो उनका कपड़ा धोते थे वो, उनकी चक्की पीस के रखते थे ऑलरेडी। कितना भगवान प्रेम करते अपने भक्त पर,
ऐसे प्रेमी भगवान हमारे हैं, हमारे देश में आते हैं, हमारे भूमि में आते हैं, और जहां जहां भक्त बनते हैं उनके वहां वहां उनकी सेवा करने भाग जाते हैं वो। भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए भागते हैं और भगवान भी उसकी प्रतिस्पर्धा में उनकी सेवा के लिए भागते हैं, और ये कॉम्पिटिशन जो है ना वो चलते रहता है। भक्त भगवान की सेवा में भागते हैं और भगवान के भक्त भगवान की सेवा में भागते हैं, ये प्रेम का रिश्ता है। और ये प्रेम को समझने के लिए हमारा मनुष्य जीवन है। कुत्ता बिल्ली के जीवन में आप ये नहीं समझ सकते। ये सारा प्रवचन जो है ना मनुष्य के लिए है। यहां पर कुत्ते बिल्ले बैठेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग मनुष्य हैं इसलिए भगवान की चर्चा हो रही है। मनुष्य जीवन भगवान की चर्चा के लिए है, कुत्ता बिल्ली का जीवन भोग लेने के लिए। और मनुष्य बनकर भी केवल भोग लेते रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली के समान हो गए हम लोग। इसलिए मनुष्य बनने के बाद मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य का शरीर का जन्म होने के बाद में मनुष्य बनना भी चाहिए, मन से, भावना से, बुद्धि से और चेतना से। तब जाकर भगवान ने जो प्रयोजन किया आपके लिए मनुष्य बनाने का, है ना, कुछ प्लान तो किया होगा ना। इतने जन्म घूमने के बाद में एक अपॉर्चुनिटी, मौका दे दिया आपको, कुछ योजना होगी ना उसके पीछे। वो योजना सफल बनाने के लिए हमको पहले मनुष्य बनना चाहिए और भक्त बनना चाहिए, नहीं तो हम सब लोग तंबाकू खाने में, आटा, ये मांस खाने में, सिगरेट पीने में लगे हुए हैं। मजा करो, खाओ पियो, ऐश करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बात तो सही है लेकिन कर गलत रहे। ये बात सही है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हो सकता है दोबारा कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, पंछी बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा बन सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी दोबारा मिलने का गारंटी नहीं है। अभी हाथ में आपके है, आज आपके हाथ में है, आप मनुष्य हैं। आज गर्व से कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं, और भक्ति भगवान की इसी जीवन में कर सकते हैं, भगवान का संबंध इसी जीवन में जोड़ सकते हैं, भगवान के साथ प्रेम इसी जीवन में कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के श्रृंखला से, दुख कष्ट के लाइन से मुक्त होने का चांस यही मनुष्य जीवन है। और किसी भी जीवन में, जैसे मैंने कहा ना, स्वर्ग हो या पृथ्वी हो या नरक हो, भगवान के धाम में यहां से जाना है। वैसे ही और एक रास्ता है, देवताओं के शरीर में या नरक के शरीर में या इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा और शरीर में से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कुत्ता बिल्ली भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, और नरकवासी राक्षस, दानव, दैत्य भी नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। आप सोचिए कितना कीमती जीवन है ये, केवल मनुष्य कर सकता है। भले उसका जीवन 150 साल का होगा, भले उसके मुंह से, शरीर से बदबू आती होगी, भले उसके शरीर से मलमूत्र निकलता होगा जो देवताओं के शरीर से निकलता नहीं है, सुगंध आती है, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति ना देवता के शरीर से होती है ना राक्षस के शरीर से होती है, केवल मनुष्य के शरीर से हो सकती है। इसलिए ये बात बोलिए, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बात सही है। इसी जीवन में आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और अभी प्रयास करेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं तो दोबारा कहीं फंस जाएंगे, कहीं फिसल जाएंगे तो पूरा चक्र काट के दोबारा आना पड़ेगा। जैसे हमने हाईवे पे कहीं रॉन्ग कट ले लिया तो क्या होता है, पूरा घूम के वापस आना पड़ेगा, सही लाइन में जाना पड़ेगा। सिग्नल तोड़ के उल्टा गुल्टा घूम के नहीं आ सकते, एक बार गलत कट ले ले तो आपको फिर पूरा गोल घूम के वापस वहां आके फिर वहां से सही जाना पड़ेगा। फिर अक्सर हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है, पता मालूम होता है ना, गोल गोल घूमते रहते हैं, वहां पर आते हैं वापस गलत टर्न लेते हैं, वहां पर वही गोल गोल घूमते रहते हैं, फिर बोलेगा राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर वापस वहीं आते हैं। हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, इंद्रिय भोग के चक्र में, शरीर के भोग के चक्र में गोल 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 घूम रहे हैं, लेकिन सुख तो कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं, इस भगवत गीता का ज्ञान इसी जन्म में समझने का प्रयास करो। आप में आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि अरे हम तो बच्चे हैं, अभी तक स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमको संस्कृत नहीं आता है। कुछ बोलेंगे हम तो औरत है, तो घर में बच्चे हैं, पति है, सब सेवा करनी पड़ती है। कुछ बोलेगा बुढ़े हैं बहुत, अभी शरीर तो बीमार हो गया, अभी बीमारी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, अंदर दर्द, बाहर दर्द, अभी कैसे करेंगे पढ़ाई, तकलीफ कितनी है। ये सबके बावजूद भी करना है, कष्ट कौन से जीवन में नहीं, बताओ कौन सा जीवन ऐसा है? प्रधानमंत्री का जीवन ऐसा है कि राज्य के मंत्री का जीवन ऐसा है कि जो बिजनेसमैन करोड़पति है उनका जीवन ऐसा है जिसमें दुख नहीं है? बताओ, सबके जीवन में दुख है। मैं तो अमीर से अमीर आदमी भी कोर्ट में झगड़ता नहीं, क्या है, सुखी सुख है तो झगड़ना क्यों है, तू भी सुख ले मैं भी लेता हूं, झगड़ने की जरूरत है? लेकिन अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी झगड़ा कर रहे हैं सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, छीनने के लिए, क्योंकि दुख है जीवन में, इसलिए सुख ढूंढ रहे हैं। सुख और दुख एक ऐसे एक दूसरे के उल्टा है, सुख की कल्पना है क्योंकि दुख है इसलिए सुख की कल्पना है, तो आपको मालूम पड़ता नहीं कि सुख और दुख क्या है। दुख है इसलिए सुख को वैल्यू है, अगर सुख ही सुख होता तो दुख तो दुखी दुख होता, या सुखी सुख होता तो सुख की वैल्यू नहीं होती ना। जो रोज लड्डू खाता है उसके बाद लड्डू की वैल्यू होती क्या? तो दिवाली में खाता लड्डू उसको लड्डू की वैल्यू होती है, दिवाली में एक ही साल में एक बार खाने को मिलता है। इसलिए हमारे मराठी में कहावत है राजाला दिवाली का है माहित, क्योंकि रोज दिवाली के खाने रोज खाता है वो, दिवाली कभी आई कभी गई उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो लड्डू चकली और चिवड़ा हम लोग दिवाली बनाते हैं वो रोज खाता है। तो सुख की वैल्यू भी दुख से होती है, ये सोचने की बात है। केवल भारतवर्ष में ये सोच मिल सकती है आपको, और किसी भी देश में ये सोच नहीं मिल सकती है, बाकी सारे देशों में केवल भोग की व्याख्या मिलेगी आपको, कैसे भोग लेना है, बढ़िया से बढ़िया कैसे भोग लेना है। लेकिन भारतवर्ष से वर्ष में से भोग से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, उनका संबंध क्या है, वो संबंध बनाना कैसे है, उसमें परिपूर्ण बनना कैसे है, और आखिर में भगवान की प्राप्ति करनी कैसी है, ये इस भारतवर्ष में आपको सीखने को मिलेगा। भले हमारे देश में एयरपोर्ट से हर 2 सेकंड में फ्लाइट नहीं उड़ती होगी, तो सिंगापुर में उड़ती होगी, इंग्लैंड में भी उड़ती होगी, देखा है हमने, लोग प्रश्न पूछते हैं हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। भले यहां पर वो नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर भगवान मिलेंगे आपको, जिस देश में 2 सेकंड में एक फ्लाइट उड़ती है वहां पर भगवान मिलने का कोई गारंटी नहीं है। भोग मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख शांति और भक्ति जो है इस देश में मिलेगी आपको। इसलिए भारतवासी होने पर गर्व करना सीखो, अपनेपन पे गर्व करो, विदेशी बनकर गर्व मत करो। हाँ, सब कुछ विदेशी है हमारा, हर चीज, हमारी गाड़ी, हमारा जूता, हमारा सॉक्स, हमारा बनियन, हमारा शर्ट, हमारी पैंट, हमारी साड़ी, हमारे बर्तन, हमारे मशीन, घर में जो भी है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सब विदेशी है। और गर्व करते हैं हम लोग कि ये जापान का है, इंग्लैंड का है, ये जर्मनी का है, ये घड़ी जो है वो जापान की है, इसी में गर्व मानते हैं। अपनेपन पे गर्व ही नहीं है, परदेशी होने पर गर्व है, लेकिन विदेशी लोग भारतीय वस्त्र पहन के गर्व नहीं मानते हैं, वो ये बोलते नहीं कि ये भारत का शर्ट लाया मैंने, वो अपने देश पर गर्व करते हैं। और हम लोग हमारे देश के होने पर भी परदेशी पर गर्व करते हैं, ये गर्व की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये लांछन की बात है, ये नाम क्या कहते हैं, नामुष्की, मराठी बोलते हैं अपन, नामुष्की है ये, दुर्दैवम इद्रशमिहा, ये है वो दुर्दैव। लेकिन इस दुर्दैव को, विदेशी पर गर्व करने के दुर्दैव को सुदैव में हम बदल सकते हैं। केवल यहां पर जो सॉफ्टवेयर है ना उसको बदली करना पड़ेगा बस थोड़ा सा, और आज से इसी क्षण से भारतीय होने पर गर्व करना पड़ेगा और भारतीय वस्तु पर गर्व करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 12 महीने अन्न उगता है, और जिस देश पर हम गर्व करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और दुबई, हाँ, वहां पर कोई खाना नहीं बनता है, सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, भारत से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बर्मा से, इधर से उधर से खाना मंगाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि टॉयलेट में जो पानी यूज करते हैं उसी को वापस शुद्ध करके पीने को देते हैं, क्योंकि पानी नहीं, बारिश ही गिरती नहीं, तो क्या करेंगे, एकदम प्योर जल देंगे आपको, लेकिन वही जल को शुद्ध करके प्लांट में से घुमा के पूरा बैक्टीरिया फ्री करके देंगे आपको, लेकिन आप पानी वही पी रहे हैं जो हमने धोखे भेजा था नाले के अंदर। भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति वो रिसाइकल किया वो पानी नहीं पीता है, वो नदी का जल का इधर का उधर का फ्रेश पानी पीता है। ये कितने लोगों को पता है, जितने जितने बड़े बड़े देश है, सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, गल्फ कंट्री, दुबई, धनी धनी देश, सब लोग टॉयलेट का पानी दोबारा साइकिल करके उसको शुद्ध करके पीने में लाते हैं, वही पानी आपको गैलन में मिलता है पीने के लिए। परदेश में नल से पानी नहीं आता है पीने का, पीने का पानी वो गैलन में खरीदना पड़ता है मॉल में जाके, और हमारे देश में नल में पानी आता है उसी को हम पीते हैं उबाल के। हर प्रकार की सब्जी हर सीजन में मिलती है हमको यहां पर, और यहां से वो इंपोर्ट करके वो लोग खाते हैं उसको। इतना गौरव है हमारे देश का, और ये तो प्राकृतिक तो है ही, कितने ऐसे देश हैं जिसपे हम आज गर्व कर रहे हैं, वहां पर कभी कभी 6-6 महीने के लिए सूर्य का दर्शन नहीं होता है। हमारे यहां पे 7 दिन कभी बहुत वर्षा होती है ना तो दिमाग खराब होता है, अरे 7 दिन तक सूरज को देखा ही नहीं, मन में डल हो जाता है, एकदम निरुत्साह हो जाता है, और वहां पर 6-6 महीने तक सूर्य का दर्शन नहीं होता है, बादल ही बादल, ठंडी ठंड, बर्फ ही बर्फ। फिर लोग पागल होते हैं, विंटर डिप्रेशन का बीमारी होता है वहां पर, सर्दियों में मन का होता है ना वो निरुत्साह की बीमारी होती है। फिर वो लोग फ्लाइट पकड़ के मालूम करते किधर में किस देश में सूर्य है अभी, उधर फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, और फिर मन को थोड़ा अच्छा आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि सूरज का होना मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सूरज के होने से जंतु नष्ट होते हैं, सूरज के होने से पेड़ों को पौधों को संजीवनी प्राप्त होती है, वो फल फूल देते हैं, जीवन चलता है, बहुत जरूरी है सूरज का होना। और हमारे देश में एक ही सा देश है जो 12 महीने सूरज का प्रकाश मिलता है यहां पर, और जो फ्री में भाग्य मिल रहा है उसको हमको वैल्यू नहीं होती है, हम कहीं और भाग रहे हैं, वो लोग आपका सूरज देखने के लिए यहां भाग के आते हैं। जैसे वो हमेशा बोलते हैं हमारे विदेशी भक्त लोग, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री बोलते हैं, 12 मंथ्स इन ईयर देयर इज सन हियर। बोलते क्या है इसमें, इतनी बड़ी बात क्या है, वहां जाके रहो बालम मालूम पड़ेगा कितनी वैल्यू है उसकी, तब जाकर यहां पर हर प्रकार के भोजन बनते हैं, हर प्रकार के, पंजाबी अलग, साउथ इंडियन अलग, महाराष्ट्र अलग, गुजराती अलग, कर्नाटकी अलग, उधर का यूपी का अलग, हाँ उड़ीसा का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। अरे फ्लास्क में दूध पीते हैं, फ्लास्क में, मालूम है क्या आपको, ग्लास में नहीं पीते, कुल्हड़ में नहीं पीते, इतना वैभव है वहां पर, इतनी हरियाली, इतना प्रकृति है। हम लोग प्रकृति देखने को कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, हमारे हिमालय के कदम कदम पर स्विट्जरलैंड से अधिक सौंदर्य है, जाके देखो तो सही, लेकिन हमारा मन लगा है उधर, अपना एंटीना उधर लगा है, उधर जाना है आपने, क्योंकि वहां जाके आएगा तो यहाँ का लोग सलाम करेगा, अरे बॉस स्विट्जरलैंड जाके आए। तो ये सब बात गीता से निकली थी कि यही देश है वो जिस देश में इतनी खूबियां हैं, और एक जगह पर आप बोलो कि ये खूबियां भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि इस भूमि में आपको भगवान के विषय में ज्ञान मिलेगा, भगवान का कनेक्शन मिलेगा, भगवान का संबंध मिलेगा, और भगवान की प्राप्ति भी होगी, सबसे बड़ी प्राप्ति तो ये है। बाकी तो फल फूल तो चीज है, भगवान ने बाय द वे बोलते ना, बाय द वे दे दिया आपको, बारिश भी दे दिया है, 4 महीने बारिश होती है यहां पर, विदेश में बारिश नहीं होती। अभी वो गए ना इंडिया में, इंडिया खेलने गए ना साउथ अफ्रीका में, मालूम है आपको, क्रिकेट खेलने गए ना, सारे धनी क्रिकेटर लोगों को बता दिया है 2 मिनट के ऊपर आपके बाथरूम में नल नहीं मिलेगा आपको, 2 मिनट के अंदर स्नान करना है आपको, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतना अकाल पड़ा हुआ है, इतना अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को पास पीने का पानी नहीं है। तो जिस देश में पानी बहुत सारा है वहां से खेलने के लिए उस देश में गए हैं, तो 2 मिनट में स्नान करना पड़ रहा है उनको। अब जो रुपया उनके पास, अब जो रुपया बेच के भी देखे भी, उनको एक बाल्टी 10 मिनट के लिए नहीं मिलेगी स्नान करने के लिए। तो इसलिए भाग्य क्या है पहले समझो हम, भाग्य किसको बोलते हैं। और ये भाग्य यहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने देश पर गर्व करो, अपने देश के गीता पर गर्व करो, श्रीमद् भागवत पर गर्व करो, भगवत ज्ञान पर गर्व करो, पुराणों पर गर्व करो, तीर्थ स्थलों पर गर्व करो। हाँ, विदेश में एक तीर्थ स्थल है जहां पर यीशु का जन्म हुआ था, 2 शहर है जहां पर मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। अरे भारत में आओ, करोड़ों तीर्थ स्थान है, करोड़ों तीर्थ स्थान। उत्तर में देखो, दक्षिण में देखो, पूर्व में देखो, पश्चिम में देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जगह जगह पे पवित्र स्थान है। इसलिए हमको वैल्यू नहीं है उसका, ना बहुत है ना, क्या करें। एक नदी है उधर थेम्स नाम की इंग्लैंड में, एक ही नदी है, ऐसा रखा है उसको कि खड़े रहेंगे ना तो उसका तल भी दिखेगा आपको, इतना स्वच्छ रखा है उसको। कोई प्लास्टिक की बोतल, बिस्लेरी की बोतल नहीं गिर रही उसके अंदर, फाइन करते हैं फाइन। और हमारे देश में कितनी नदियां हैं, अनंत नदियां हैं, हर नदी की एक दास्तान है, एक कहानी है, भगवान के साथ संबंध हुआ है उसका, लीला हुई भगवान की, हर एक नदी पवित्र नदी है। वो थेम्स में क्या पवित्रता है बताओ, कोई लीला भगवान ने किया उधर? हमारी यहाँ पर अनंत नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, भीमा, इंद्रायणी, देते जाओ नाम। एक आप यहां से केरला में चले जाओ ट्रेन से, और यहां से लेके वहां तक नदी गिनो खाली, बस कम से कम 100 नदी आएगी आपके ट्रेन के जर्नी में, एक रास्ता में बता रहा हूं मैं, खाली बॉम्बे से केरला तक, बाकी रास्ते बताऊंगा तो और नदी आएंगी। इतना भाग्य है हमारा, लेकिन वैल्यू नहीं करते हम लोग उसको। इसलिए भगवद गीता को पढ़ो, वो आपके लिए भगवान ने बताया है, और आपको ये भी आदेश दिया है कि खुद पढ़ो और लोगों को भी सिखाओ, जो विदेशी हैं, जो समझते नहीं है, जो इतने आपके जैसे भाग्यवान नहीं है, उनको पढ़ाओ। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है उसका ये भाग्य है कि वो अपना जन्म सार्थक कर सकता है। जन्म सार्थक कोरी कोरो परोपकार, केवल जन्म सार्थक नहीं कर सकता है, जन्म सार्थक अपना खुद का करके परोपकार भी कर सकता है। वो जो कम भाग्यवान है उसके पर उपकार कर सकता है, वो ज्ञान उसको दे सकता है। रिक्शा वाला जो मथुरा में चलाता है, वो भी पूरा गीता जानता है, गीता जानते जानते बताता है आपको, आई मीन रिक्शा को चलाते जाते गीता सुनाता है वो। और अमेरिका का जो विद्वान PhD है ना, जिसने गीता पर PhD किया है, वो भगवान को नहीं मानता है, आया समझ में आपको? उसने अपने यूनिवर्सिटी में पैसा कमाने के लिए भगवत गीता पर PhD किया है, वो उसका प्रोफेशन है, वो उस पर लेक्चर भी देता है बड़े बड़े विद्यापीठों में जाकर देश विदेश में, लेकिन उसको भगवान पर विश्वास नहीं। ये कैसा विरोधाभास है, भगवत गीता पर PhD किया है और कृष्ण पर विश्वास नहीं उसको। क्या बोलता है, कृष्ण बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, चोरी भी करता है, रात में सभी पराई औरतों को मिलता है, क्या क्या करता है, बहुत मतलब उसका चरित्र अच्छा नहीं है, बोलते भगवान कैसे हो सकता है वो, कोई चरित्र ही अच्छा नहीं है, इतना अज्ञान लोगों के अंदर भरा हुआ है, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो सद्भाग्य हमारे हाथ में है, हमारे देश में, हमारी भूमि में, हमारी मिट्टी में है, इतना अच्छा कल्चर है यहाँ पर। कौन सा देश ऐसा है जिसमें मेहमानों को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, कौन से देश में ऐसे होता है बता? आप नॉक करेंगे दरवाजे पे ना तो कुत्ता भौंकता है आपके ऊपर, विदेश में वो लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, ऐसे दरवाजे पे लिखा रहता है। भारत में लिखते हैं सुस्वागतम, और भारत में जो विदेशों का अनुकरण करते हैं वो भी लिखने लगे हैं कुत्तों से सावधान, और गांव में जाके देंगे तो गोबर के घर पे लिपा हुआ लिखा रहता है सुस्वागतम, कभी भी आओ, दरवाजा खुला है, फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि हम भी पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत धन भी हमारे पास में है, हम भी जब जाते हैं ना वृंदावन में तो किसी भी झोपड़ी में घुसकर मैया रोटी खिलाओ तुरंत रोटी बनाकर खिलाती हो। ये अनुभव किया आपने कभी? कभी करो जाके आप, पेट भर में छाछ खिलाएगी आपको, मक्खन लगाकर चुपड़ के रोटी खिलाएगी, बैठो बेटा बैठो, गरीब से गरीब औरत और अमीर से अमीर आदमी आपको बोलेगा कौन है आप, क्यों आए हो, चले जाओ, कुत्ता भोंकेगा आपके ऊपर। इतना बड़ा कल्चर प्रेम का जो है ना इस देश में, और उसको हम खो रहे हैं अभी धीरे धीरे, कलयुग के प्रभाव से खो रहे हैं। हम लोग जीन पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, बाल छोड़ के घूमते हैं, किसका कल्चर है ये? विदेशी कल्चर है, इम्पोर्टेड। अधिक से अधिक शरीर को नंगा रखना है, अधिक से अधिक कम से कम कपड़ा पहनना है, ये किसका कल्चर है? उनका कल्चर आया इधर, उस पर हम गर्व मानते हैं अपने आप को, और हमारा नौवारी हमारा धोती कुर्ता पहनने में शर्म करते हैं हम लोग, ऐसा पल्लू लेके शरीर पे सर पे चलने के लिए शर्म करते हैं औरतें, क्या है घाटी गाउटी, हाँ ऐसा बोलते हैं। सब कुछ खुला छोड़ के घूमना मतलब बहुत एडवांस हो गए, बहुत प्रगति कर चुके हैं, सब दिख रहा है शरीर का मतलब एडवांसमेंट हो गया है, इतना प्रगति, इतना मॉडर्न, इतना पढ़े लिखे लोग हैं, देखो कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसी बात करते हैं, हाँ बोलते ना माँ को मम्मी बना दिया है, मतलब क्या पता है मन में मम्मी क्या आता है? वो मोम का उसका बनाते हैं, जो मर जाता है ना उसका, वो मोम में बना देते हैं उसको, उसको मम्मी बोलते हैं। पिताजी को डैड बना दिया, डैड डैड बनाते है ना, और भाई को ब्रो और सिस्टर को सिस बना दिया, इसी में प्रगति मानते हैं। पिताश्री माताश्री काकाश्री खत्म हो गया पूरा, इसी में गर्व मानते हैं। उनके जैसा बात करना, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा नाम देना, हाँ बंटी घंटी टॉमी डॉकी ये बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सब बच्चों का नाम राम सीता नरसिंह वामन प्रभु दयाल दीन दयाल, देखो आप दुकान के नाम देखो जयपुर में जाके, और आज के नाम क्या है? बंटी घंटी, विदेश का प्रभाव है। इसलिए रात भर भी बोल सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं आपको क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे अधोगति हो रही है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो अपने देश के संस्कृति पर गर्व करो, अपने देश के दिए हुए भाग्य पर गर्व करो, अपने देश में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस पर गर्व करो। इस देश में रहकर भगवान की प्राप्ति करना आसान है तो भगवान की प्राप्ति करो। हमारे घर मेरा परिवार जो है ना उसमें से 80% लोग हमारे परिवार के लोग अमेरिका में सेटल हो गए, वहीं शादी करके वहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनको पता नहीं गणपति कौन है, देवी कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, कुछ पता नहीं है, दिवाली क्या है, दशहरा क्या है और पड़वा क्या है, कुछ पता नहीं उनको। पूछते रहते हैं हू इज एलिफेंट गॉड, हू इज मंकी गॉड, ये हमारी स्थिति हो रही है, उसी में गर्व मानते हैं। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भाई भी है ग्रीन कार्ड लेने को वहां पर प्रयास कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड वहीं पर रहना है उनको, वहीं पर रहना है, वहीं पर रहने में गर्व करते हैं, उधर ही मरना है उनको, कितनी दुख की बात है। हमारा तो दम घुटता है वहां जाने पर, हम जाते हैं केवल प्रचार करने के लिए या कथा करने के लिए या प्रवचन देने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन वहां का जो संस्कृति है वो देखिए दम घुटता है हमारा। यहाँ पर जो सुकून है, जो खुलापन है, जो आनंद है, वो किसी भी देश में नहीं है। इस देश में हम जब चाहे तब भगवान का जुलूस निकाल सकते हैं, चाहे बुद्ध धर्मी हो, मुसलमान धर्मी हो, क्रिश्चियन धर्मी हो, हिंदू धर्मी हो, निकाल सकते हो, विदेश में नहीं कर सकते ऐसा आप। इतना खुला वातावरण है यहाँ पर धर्म के विषय में, भगवान के विषय में सबको समान संधि है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ऐसा किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, निधर्मी बोलने वाले देश में भी नहीं है। इसलिए भारत का गौरव विदेश जाने पर पता चलता है, लेकिन जो विदेश का गौरव समझ कर जाते हैं वो वहीं के हो जाते हैं, यहाँ का गौरव भूल जाते हैं, लेकिन जो भारतीय बनकर वहां यात्रा करते हैं उनको भारत का गौरव वहां जाने पर अधिक मालूम पड़ता है। जैसे खाते पीते देश से भूखे देश में गए तो खाते पीते देश की वैल्यू मालूम पड़ती है, अभी अब क्रिकेट खेलने गए ना तो भारत की वैल्यू मालूम पड़ेगी। कभी भी जाओ कहीं भी पानी मिलेगा आपको, वहां पर जाके दो मिनट में स्नान करना पड़ रहा है। तो आइए, आज गीता का यज्ञ किया है ये समझ के मत करना, हाँ मैंने भी कुछ चार गीता का दान दिया है, मेरे को पुण्य मिलेगा तो मैं स्वर्ग में जाके थोड़ा आनंद लेके आऊंगा, इसलिए मत करना। क्षणे पुण्य मर्तलों के विशंती, वापस आके यहां पर तड़पेंगे आप। गीता दान इसलिए किया है कि मैं खुद गीता का महत्व जानता हूं, उसको जीवन में उतार चुका हूं, लोगों को भी देना चाहता हूं, उनके जीवन में भी वो उतरे, इसलिए गीता दान दिया है मैंने। पुण्य कर्म इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया है, उसके अंदर क्या लिखा है उसको उतारने के लिए ये गीता दान किया जा रहा है, भगवान के आनंद के लिए। अब भगवान क्या बोलते हैं एंड में, क्या बोलते हैं भगवान के अर्जुन को, कि ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये जो भी दूसरों को समझाएगा उससे अधिक प्रिय व्यक्ति मेरा कोई नहीं होगा, ना अभी हुआ है ना आगे होगा। ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये दूसरों को जो समझाने का प्रयास करता है वो मेरा अति प्रिय भक्त है, बहुत ही प्रिय है। और उसके अगले श्लोक में कहा गया है कि उससे अधिक मेरा और कोई प्रिय नहीं है। एक ही बात दो बार कही है अलग तरीके से, क्यों कही दो बार, उसका महत्व समझाने के लिए कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलेंगे, सच बोलो लेकिन झूठ मत बोलो, दोनों बात तो एक ही है लेकिन दो बार अलग तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। सच बोलना, झूठ कभी भी मत बोलना, दोनों बात बताई जा रही है क्योंकि दोनों बातें एक सत्य को प्रकट कर रही है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग तरीके से बताया जा रहा है। वैसे भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान बोलने वाला व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय होगा, और अगले श्लोक में बोलते हैं उससे अधिक प्रिय और कोई नहीं होगा। तो आप लोगों को भगवान से प्रिय बनना है तो बहुत आसान तरीका है, खुद गीता पढ़ो दूसरों को सुनाओ। सार क्या है उसका, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, सब कुछ भूलकर मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें, मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, दस देवताओं के चक्र काटने की जरूरत नहीं है, एक मेरे शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रजम, और मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो गीता का सार कर्मण्येवाधिकारस्य से नहीं है, वो बोल रहे सब कुछ छोड़कर, कर्म ज्ञान सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मेरा बन जाओ, फिर मैं आपका बन जाऊंगा, और जब आप मेरे बन जाओगे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, योगक्षेमम वाहम्यहम, सब आपके पास जो है बचा के रखूंगा, जो नहीं है वो दे दूंगा, आपका कल्याण करूंगा मैं, डोंट वरी, एक बार मेरा बन के तो देखो, ऐसा भगवान पुकार रहे हैं। और भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं सब कुछ तुमको सुना दिया मैंने, आप जो जो सुना देना है, जो भी आपको जानना जरूरी है सब बता दिया मैंने आपको, लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको क्या करना है, आप अपने आप तय करो आपको क्या करना है। और अर्जुन बुद्धिमान थे इसलिए उन्होंने बोला करिष्ये वचनम तव, ये गीता का लास्ट वर्ड है अर्जुन का, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आप जो बोलेगा वही करूंगा। ये कंक्लूजन जो है ना वो हमारे जीवन में होना चाहिए कि भगवान अभी आप बोलेंगे वो करेंगे, तो जीवन सफल है आपका, क्योंकि तो भगवान ने जो कहा वो अर्जुन ने किया इसलिए अर्जुन विजयी हो गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर अर्जुन और गीता में बताया गया लास्ट श्लोक में, जहां भगवान खड़े हैं और जहां अर्जुन खड़े हैं वहां पर विजय है, नीति है, सब कुछ है वहां पर, मतलब जहां भक्त और भगवान साथ में खड़े हैं वहां पर क्या नहीं है, सब कुछ पवित्र, आनंदमय, सुखमय, विजय, नीति, ज्ञान, सब उधर ही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और भगवान का भक्त बनो, भगवान से जुड़ जाओ, जब ये जोड़ी बनेगी भक्त और भगवान की, सब आपको जो चाहिए वो मिलेगा, उस समय दस जगह भटकने की जरूरत नहीं। तो क्या बोलते हैं, एक मंत्र होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए और एक संत होना चाहिए हमारे जीवन में। क्या क्या बताया, एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक संत, ये चार चीजें अपने जीवन में होनी चाहिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र भगवान का नाम का, एक संत जो गुरु हैं, एक ग्रंथ भगवत विषय के, भगवत के विषय में, मतलब भगवत गीता है, और एक पंथ जो भगवान तक पहुंचाता है, संप्रदाय, बस, और जीवन में कुछ जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। सब लोग ने आपने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे एक घंटा जो बोले हम, उसमें दो वाक्य भी आपको समझ में आया और दो वाक्य भी जीवन में उतारा, तो हमारा इतना दूर आना भी सफल हो गया है ना। अगर भारतीय अस्मिता 1% से भी आपकी जागृत हो गई, तो भी हमारा यहाँ पर आना, यज्ञ करना सब सफल है। हमारी विनती आपको, हाथ जोड़कर विनती है, प्रेम से गर्व से भारतीय बनो, अपने जमीर को विदेशी लोगों को मत बेचो, अपना ज्ञान उनको दो, अपने ज्ञान पर गर्व करके उनको ज्ञान देके समृद्ध करो। वो धन से समृद्ध है, आप विद्या से समृद्ध हो। पर धन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, धन यहां छोड़ के जाना पड़ता है, विद्या आपको तार देती है भगवान के धाम में। जितना भी धन जितने भी कमाते हैं छोड़ के जाते हैं यहां पर, लेकिन विद्या का जो साक्षात्कार है आत्मा के साथ लेके जाते हैं भगवान धाम में। आइए सब मिलकर भाग्यवान बने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।